The following is a lecture on Nakalia Daman Lila from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 16, verses 35 through 37, on the topic of Kalia's uncommon fortune. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami in Haridwar, India on May 4th, 2000.
Tapaha sutaptam kimane napurvam. Nirastamane nachaman dena. Dharmothava sarvajana anukampaya. Yato bhavanstu syati sarvajivaha. Kasyanubhavoshyan deva vidmahe. Tavangri venus parashadhikaraha. Jadvanchaya sri lalana charattapa. Vihaya kaman suchiram dhritavrata. Akapristham nacha sarvabhaumam. Na paramesthyam na rasadhipatyam. Na yoga siddhira punarbhavam va. Vanchanti jat padrajah prapannaha. Tadesh nathap durap manyai. Tamo jani krodh vasopyahi saha. Samsar chakre bhramatah sariridho. Jadi chatah syad vibhava samakshah. Tapah, tapah, sutaptam, sushtu anusthit. Kim, kaun sa, anena, iske dwara, hamare pati ke dwara, purvam, purv janm mein, is janm mein to koi tap hua nahi. निरस्त माने ना मानहीन होकर अमानी रहकर चा और मान देना दूसरों को मान देते हुए धर्म धर्म भगवत भक्ति अथवा अथवा सर्वजनानुकंपया सभी जीवों पर अनुकंपा करते हुए जतो जिन दोनों से तपस्या और धर्म से भवान आप तुष्यति प्रसन्न होते हैं सर्व जीवः सब जीव आपके हैं अथवा सभी जीवों में आप हैं तो भगवान का अद्भुत अचिंत्य कृपा वैभव अपने पति के ऊपर देखकर काली नाग की पत्नियां भगवान से कहती हैं, तपः सुतप्तम किमनेन पूर्वम निरस्तमाने नचमान देना धर्मोथवा सर्वजनानुकंपया जतो भवांस्तु सर्वजीव। हे नाथ, हमें कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, किसी भी तरह से हमारा मन या हमारी बुद्धि उस बात को पकड़ नहीं रही है कि हमारे पति ने क्या पुण्य किया, क्या तप किया था पूर्वम पूर्व जन्मों में, जिससे आपका ऐसा अनुग्रह प्राप्त हुआ है। तो दो कार्य करने से किसी भी जीव का उन्नयन होता है, उत्कर्ष होता है, वह है तपस्या और धर्म। तपस्या का अर्थ है इंद्रियों को जो कष्ट हो भगवत भक्ति में उसको सहना है, और धर्म का अर्थ कर्तव्य, कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करने के लिए जीवों का जो सहज कर्तव्य है उसको धर्म कहते हैं। सवई पुंसाम परो धर्मो जथो भक्ति अधोक्षज, जिससे अधोक्षज में इंद्रिया गोचर भगवान श्री कृष्ण में स्वाभाविक अखंड अहैतुक प्रेम हो, जिस कार्य को करने से, वही जीव का धर्म है। तो जो भी व्यक्ति धर्म करता है और तपस्या करता है तो उसके जीवन में भगवत प्राप्ति का सुयोग होता है, या और भी जो भी पुरुषार्थ हैं वे स्वाभाविक प्राप्त हो जाते हैं। परंतु काली नाग की पत्नियां भगवान से यह कह रहे हैं कि इस जन्म में तो हमारे पति ने कुछ भी धर्म नहीं किया, कोई तपस्या नहीं किया। पूर्वम शब्द से यह ध्वनित हो रहा है, तपः सुतप्तम किमने न पूर्वम। पूर्वम शब्द इस जन्म के द्वारा सुकृत कर निराश कर रहे हैं। पूर्वम पहले, कितना पहले ये नहीं कह रहे हैं कि 2 साल पहले या 10 साल पहले, पूर्वम मतलब पूर्व जन्म नहीं है, पूर्व जन्म से इस जन्म में हमारे पति का ऐसा स्वभाव है कि हम कभी भी अनुमान भी नहीं कर सकते हैं कि बचपन में भी ये कुछ एकाग्रमाला जप किए होंगे या भजन किए होंगे, ऐसा नहीं। इतना जल्दी स्वभाव नहीं बदल सकता है कि शुरू में साधु महात्मा रहे हों और बाद में इतना हिंसक सर्प हो गए। इसलिए पूर्व पूर्व जन्म में क्या तप किया था इसने, अनेना उंगलियों से दिखा करके अपने हाथ से भगवान से कह रहे हैं ये क्या तप किए थे ये दुष्टराज, क्या तप किए थे। एक तरफ हम इनके सौभाग्य को देखती हैं, आपकी प्राप्ति, आपका अनुग्रह प्राप्त हुआ, दूसरे तरफ इनका स्वभाव। भगवान से ही मानो पूछ रहे हैं कि आप ही बताइए कि इन्होंने क्या सुकृत किया था, इस जन्म में तो कुछ किया नहीं। तो पूर्वम पहले जन्मों में किम तपः सुतप्तम, कौन सा तप सुष्ठु तप्त हुआ है, कौन सी तपस्या का अनुष्ठान हमारे पति ने खूब अच्छी तरह से किया। तपस्या में सद्गुण लाने के लिए, मतलब तपस्या खूब अच्छी तरह से हो, इसके लिए 2 गुण होना आवश्यक है किसी में, वो है अमानी और मान। अमान मानद, अमानिना मान देना, स्वयं अपने को बड़ा न समझना, और इस कारण से अपने स्वयं ही मान की इच्छा ना करना है। कोई भी मनुष्य जब इस जगत में अपने को बड़ा मानता है किसी भी क्षेत्र में, जैसे कोई माने कि मैं धनी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं हजारों आदमी के ऊपर हूँ, तो उसके मन में मान की आग जलती रहती है। कहीं भी व्यक्ति रिस्पेक्ट चाहेगा, चाहे मान का एक और तो अहंकार भी होता है, मान्यता, मैं यह हूँ, ऐसा हूँ, इस प्रकार से। तो मान जिस व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न है वह जगत में ही अपने को सुखी मानता है और अपने मानसिक स्तर से वो सोचता है कि सब लोग हमारा आदर करें, ये करें वो करें, तो उसमें अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है तृणादपि सुनिश्चित अमानिना मान देना, अमानिना अमानी रहकर कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए, अपने को बिल्कुल हीन समझकर, तृण से भी अधिक हीन समझकर, तृणादपि सुनिश्चित। और मान देना, दूसरों के प्रति कोई स्पृहा नहीं होनी चाहिए, कोई कलह नहीं, द्वेष नहीं, सब में श्री कृष्ण को विद्यमान जान करके सबका आदर करना चाहिए, वाणी से, शरीर से, धन से, सब तरह से। और इस मानसिक स्थिति में रहकर तब यदि तप किया जाए तो वह तप सुतप्तम माना जाएगा, अच्छी तरह से अनुष्ठित हुआ। तो तपः सुतप्तम किमने न पूर्वम निरस्त माने न च मान दे, निरस्त माने न और मान दे न, इसी का ठीक अनुवाद चैतन्य महाप्रभु करते हैं, अमानिना मान दे न। भगवान का वाक्य अनुवाद कहा जाएगा क्योंकि नाग पत्नियां बहुत पहले बोल चुकी हैं, वो तो बाद में आए, 500 वर्ष पहले लगभग बोले, इसीलिए मैं अनुवाद कह दिया। सुनने में लगता है क्या भगवान मूल नहीं बोले, दूसरा मूल बोला, तो वास्तव में नाग पत्नी ने बोली है इस बात को, निरस्त माने न च मान देना, अमानिना मान देना। और इस तरह से रह करके धर्म सुअनुष्ठित, वो भी इसी के साथ लगेगा, धर्मोथवा सर्वजनानुकंपया, या इसने कौन सा धर्म का आचरण किया, भगवत भक्ति किया और भी अपने कर्तव्य का पालन किया, तो कर्तव्य पालन या भगवान की भक्ति में एक गुण होना चाहिए, वो है सर्वजनानुकंपया, समस्त जीवों पर दया करते हुए कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तब वह भक्ति या वह धर्म सफल माना जाता है। कठोर हृदय से या दूसरे जीवों को सता करके, हिंसा करके, दुख दे करके भक्ति की जाती है तो वह भक्ति अपने वास्तविक फल को नहीं दे पाती है। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तन पाए से कृष्ण प्रेम धाम। तो कई प्रकार के अपराध होते हैं, उसमें वैष्णव अपराध तो बहुत घातक, लेकिन अन्य किसी जीव को भी जो भगवान के भक्त नहीं है फिर भी उनको दुख देने पर भक्ति कुंठित हो जाती है। इसलिए सर्व जन अनुकंपया, जन का अर्थ होता है जिन्होंने जन्म धारण किया है, प्राकृत शरीर ग्रहण किया है, इस जगत में प्राकृत शरीर ग्रहण करके प्रत्येक जीव सुख चाहता है, मान चाहता है, भोजन चाहता है, वस्त्र चाहता है और मधुर वचन चाहता है, सभी जीवों की इच्छा। एक कुत्ता भी चाहता है कि उससे लोग प्रेम से बोलें, कोई भी जीव सम्मान चाहता है, जितनी अपनी शक्ति हो उस शक्ति के अनुसार सभी जीवों को सुख देते हुए भगवान का भजन करना चाहिए, यह भाव है। तो सर्वजनानुकंपया, सर्वजनानुकंपा से युक्त होकर इसने धर्म का आचरण किया होगा तभी तो आप मिले, आपका चरण कमल मिला, यह कृपा। ततो का यहाँ अर्थ है जाभ्याम, जिन दोनों से, सुंदर तपस्या से और धर्म से भवान तुष्यति, आप संतुष्ट होते हैं। भगवान कभी भी भोगों से संतुष्ट नहीं होते हैं। कोई व्यक्ति खूब भोग भोगे और दूसरों का अपमान करे, अपने खूब आराम से रहे, दूसरों का अपमान करे और खूब देखा जाए तो भजन कर रहा है, भगवान उसे संतुष्ट नहीं होते। जतो भवान तुष्यति सर्वजीव, क्यों कि भगवान सर्वजीव है। सर्वजीव का यहाँ अर्थ है सर्वे जीवा जस्य सह सर्वजीव, सभी जीव जिसके हैं, भगवान के ही अंश सभी जीव हैं, सभी जोनियों में। तो जीव जब भगवान के हैं तो भगवान का प्रेम सभी जीवों के प्रति एक समान है, विषम दृष्टि नहीं है। समोहम सर्वभूतेश, सभी जीवों के प्रति भगवान की सहज स्नेह भरी दृष्टि है। अतः यदि कोई व्यक्ति दूसरे जीव को दुख देता है तो भगवान उससे संतुष्ट नहीं हो सकते, ये तो आप स्वभाव समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पिता के कई पुत्र हैं, एक पुत्र को दूसरा पुत्र दुख दे तो दुख देने वाले पुत्र के प्रति पिता की प्रसन्नता नहीं हो सकती है। भगवान यह जगत बनाए हैं तो उनकी इच्छा है कि प्रत्येक जीव एक दूसरे को सुख दे, अनुकंपा करे। कंप या अनुकंप शब्द का अर्थ होता है दूसरे के दुख को देख करके जब हृदय कांपने लगे, द्रवित हो जाए, जिसको अनुकंपा कहते हैं, उसके दुख को दूर करने की भावना उमड़ जाए हृदय में, इसको अनुकंपा कहते हैं। तो सर्व जनानुकंपया, सभी जीवों के प्रति दया करते हुए, किस धर्म का हमारे पति ने आचरण किया है कि आप मिले हैं। सर्व जीव बहुत सुंदर शब्द है। सर्व जीव का एक यह भी अर्थ है कि सर्वेषु जीवेषु भगवान तिष्ठते, आप सभी जीवों में रहते हैं, इसलिए सर्व जीव, सभी जीवों के भीतर भगवान अंतर्जामी के रूप में रहते हैं, परमात्मा के रूप में रहते हैं। अतः किसी भी जीव का अपमान तिरस्कार या उसकी इच्छा को पूरा न करना वास्तव में भगवान की इच्छा के विरुद्ध है। कोई जीव चाहता है, कोई मान लीजिए कुत्ता भी घूम रहा है बेचारा भोजन चाह रहा है, और अपनी शक्ति रहते हुए भी यदि कोई उसको भोजन नहीं दे रहा है तो यह भगवान का अपमान है, क्योंकि यही उच्चतम भक्ति की सीमा है। भागवत में कई बार बात लिखी गई है कि जो सभी भूतों में सभी जीवों में श्री कृष्ण को देखता है और श्री कृष्ण के भीतर ही सभी जीवों को देखता है, सवई भागवतोत्तम, वह समस्त भागवतों में श्रेष्ठ। तो कृष्ण सबके हृदय में है, इसे देखने का अपने जीवन में अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से सब चीजें आती हैं। प्रहलाद महाराज असुर बालकों को उपदेश करते हैं तो कहते हैं परम धर्म जब सर्वत्र तदीक्षण, ऐसे कहते हैं। सभी जीवों में गोविंद को देखना, कृष्ण को देखना, यही सबसे बड़ा धर्म है। तो नाग पत्नियां श्री भगवान से निवेदन कर रही हैं, अवश्य हमारे पति ने तपस्या किया है, आपकी भक्ति किया है, अमानी रहकर और दूसरों को मान दे करके और सभी जीवों पर कृपा करके इसी से आप आज प्रसन्न हैं। जो तो भगवान तुष्यति, आप हमारे पति के प्रति पूर्ण संतुष्ट हैं। तो बिना तपस्या के, बिना धर्म के और बिना सब जीवों पर दया के कैसे भगवान प्रसन्न हो सकते। कालिये के प्रति भगवान पूर्ण संतुष्ट हैं, यह तो भगवान की लीला से ही पता चल रहा है, और सबसे निकटतम रह कर इस लीला को देखने वाली तो नाग पत्नियां हैं, तो वे समझ रही हैं और कहते हैं आप पूर्ण संतुष्ट। लेकिन अगले श्लोक में कहते हैं कि हमारे पति के प्रति जो आपकी कृपा हुई है, आपका अनुग्रह हुआ है, यह किसी तपस्या या धर्म पालन का फल नहीं हो सकता। क्यों? किसी भी धर्म में और किसी भी तपस्या में इतना अधिक उत्कृष्ट फल देने की शक्ति नहीं है। पहले तो कहती हैं कौन सा तप किए हैं, कौन सा धर्म किए हैं, फिर बाद में कहते हैं कोई नहीं। अथवा इसका यह अभाव है, पति ने कोई धर्म का आचरण नहीं किया, कोई तप नहीं किया। यह आपका अचिंत्य कृपा वैभव है, आपकी कृपा है, अकस्मात अकारण कृपा है कि आप हमारे पति को स्वीकार किए, चाहे वो वृंदावन वास के कारण हुआ हो चाहे जो भी हुआ, यह आपकी केवल कृपा है। कैसे अनुमान करती हैं कि आपके पति ने तप नहीं किया है? वर्तमान जन्म से अनुमान करती है। यदि पूर्व जन्म में तपस्या किया होता है और धर्म किया होता है तो इतना भयावह संस्कार जन स्वभाव कैसे मिला होता है? तो वर्तमान जन्म में पूर्व जन्म को सूचित करता है और अगला जन्म भी निर्धारित कर देता है। श्रीमद् भागवत में है, जमराज के दूत कहते हैं भगवान के पार्षदों से अजामिल के विषय में कि वर्तमान जन्म में भूत और भविष्य जन्म को बता देता है। जैसे वर्तमान ऋतु, जैसे बसंत ऋतु है, तो बसंत ऋतु यह सूचित करता है कि जो बीता हुआ बसंत होगा उसमें भी इसी प्रकार की हवा चलती होगी, फूल खिले होंगे, कोयल बोलता होगा, स्वाभाविक है, पता लग जाता है कि जो कई बसंत बीत गए हैं वो भी लगभग ऐसे ही होंगे और आगे आने वाले बसंत भी ऐसे ही होंगे। तो वर्तमान में कोई व्यक्ति बहुत क्रूर है, भयावह है, पापी है, तो इसका अर्थ है कि पहले भी लगातार ऐसा ही रहा है। तो जब ऐसा रहा है तो धर्म और तप क्या करेगा? लक्षण से सब समझ रहे हैं कि नहीं, ये कहें तो तपस्या करने जाए वाले का। एक बार उसके सौभाग्य को देख करके सोचने लगी, तपः सुतप्तम कि मने न पूर्वम निरस्त माने न च मान देन धर्मोथवा सर्व जनानुकंपया जतो भवांस्तु सर्व जीव। तो फिर कहते हैं नहीं, कस्यानुभावस्य न देव विद्महे तवांग्रि रेणु स्पर्शाधिकारः यदवांछया श्रीललनाचर तप विहाय कामान सुचिरं धृतव्रता। यदि तपस्या करने से आप मिलते तो श्री से बढ़ करके तपस्विनी कौन है? बेचारी सब प्रकार के भोगों को छोड़कर कामन विहाय और धृतव्रता भक्ति के अनेक नियमों को धारण करके आज भी बेल वन में तपस्या कर रही है पर उसको नहीं मिला। जद वांछया श्री ललना चरत तपो, श्री को ललना कह रहे हैं, सर्वोत्तमा स्त्री भगवान नारायण की प्यारी जिसका वे लालन करते हैं, और जगत में जो भी लालन है, प्यार है किसी स्त्री के प्रति, किसी का चाहे पुरुष के प्रति, सब लक्ष्मी जी के कृपा कटाक्ष का फल है। यदि मनुष्य के पास धन न हो, खाने की वस्तु न हो, घर न हो, तो लालन क्या करेगा, क्या प्यार करेगा व्यक्ति अपनी पत्नी से या पत्नी पति से? तो समस्त धन की अधिष्ठात्री भगवान की बक्षो विलासिनी श्री ललना तप है आचरत, तपस्या में लगी हुई है बहुत काल से, भोगों को छोड़कर, कामन कार्य भोगन भोग छोड़कर, भोग में मुख्य भोग क्या है? आहार और निद्रा। तपस्या कोई व्यक्ति करता है तो आहार और निद्रा कम कर देता है, चाहे नील कर देता है, जीरो कर देता है। जब आहार और नींद पूरी पूरी चले तब तो तपस्या का कोई मतलब ही नहीं है। यही दो मुख्य हैं तपस्या के अंग। इसके साथ भगवान का भजन, ध्यान, पूजन जो भी है वो तो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन ये दोनों आधार हैं। तो कामन विहाय, विहाय मतलब त्यज्य, त्यक्त्वा, भोगों को छोड़कर जो शरीर को सुख देने वाली वस्तुएं हैं उनको छोड़ करके और श्री जी तपस्या कर रहे हैं। इतनी लालसा है उनकी भगवान श्री कृष्ण के चरण रज को पाने की, किसके लिए कर रही है। वो जानते हैं कि हमारे पति ही भगवान नारायण ही कृष्ण हैं, लेकिन इस रूप में वे अधिक मधुर हैं, रसिक हैं, तो चाहती हैं कि हम पा जाएं। लक्ष्मी जी क्यों नहीं पा पाई, चैतन्य महाप्रभु और वेंकट भट्ट से इस विषय में डिस्कशन हुआ है चैतन्य चरितामृत में। तो भगवान बताते हैं कि वे इसलिए नहीं पा पाई कि लक्ष्मी जी बहुत अभिमान में है, वे गोपियों का अनुगमन करना नहीं चाहती। अब वैकुंठ विलासिनी होकर भगवान की प्रिया पत्नी और गोपों की स्त्रियों के पीछे चले, कैसे हो सकते हैं, नहीं चल सकते हैं। तब मरो तप करो, नहीं मिलने वाला है। उनके मन में एक दुराभिमान है, पता नहीं आज तो कोई बताया कि नहीं बताया, अब शायद पा गई होंगी। नाग पत्नियों के उद्गार 5000 वर्ष से भी कुछ अधिक हो गए। जद वांछया, वांछा का अर्थ है उत्कट अभिलाषा, किस चीज की अभिलाषा, तवांग ग्रीरेणु स्पर्शाधिकार, आपके चरण रज का स्पर्श करने का अधिकार। इस पर कोई व्यक्ति कह सकता है कि सर्वत्र ब्रज में तो चरण रज फैला ही हुआ है और उसी में रह रही है, तो अब क्या अधिकार बाकी है। वास्तव में चरण रज कहा जा रहा है, लेकिन इसका तात्पर्य भगवान की सेवा से है। चरण रज और कृष्ण दोनों एक ही, कृष्ण की दासी बनना चाहते हैं, प्रिया बनना चाहते हैं, लेकिन कौन सा। और वह चरण रज, कृष्ण का वह दासत्व या कृष्ण की वह संगति हमारा पति पा गया। तो कस्य अयम अनुभव इति अहम न विद्म अवयम न विद्म। कस्य, कस्य मतलब किस तपस्या का, किस धर्म का यह अनुभव है। अनुभव का अर्थ है फल, भाव का अर्थ है कोई कार्य, और अनुभव का अर्थ है फल, उसका फल, उसका अनुभव का। किस क्रिया का, किस तपस्या का, किस दान का, पुण्य का यह फल है हम नहीं जानते। नहीं जानती हैं का अर्थ यह है कि किसी भी तपस्या और धर्म का यह फल नहीं है। कौन सा फल, तवांग रेणु स्पर्शाधिकार, आपके चरण रेणु के स्पर्श की योग्यता, अधिकार। और जो अधिकार काली को भगवान ने स्वयं दिया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि वहां तो चरण रज की बात तो बहुत दूर है, साक्षात चरण ही मिला, और वह भी सर्वोत्तम अंग पर मिला, सिर पर, और वह अपने भुजाओं में कृष्ण को लिया था, घंट आलिंगन में। तो इसको तवांग रेणु स्पर्शाधिकार, तव शब्द से स्पेशल अर्थ, तव का अर्थ है तव नंद नंदनस्य, नारायण रूप से तो भगवान है तो चरण सेवा करें, चाहे वक्षस्थल पर रहे, तो सब सुलभ है लक्ष्मी जी के लिए। लेकिन गोपेंद्र नंदन, गोकुलेंद्र नंदन श्री कृष्ण, इनके चरण रज दुर्लभ है लक्ष्मी जी के लिए, और वही नंद नंदन काली के मस्तक पर स्वयं आकर के नृत्य किए कई घंटे तक, यह सौभाग्य दिए। तो यह किसी धर्म पालन का फल नहीं हो सकता है। वास्तव में ठीक कह रही हैं नरपति, वास्तव में किसी साधन का फल नहीं हो सकता है। भगवान के हृदय में जो कृपा है, स्नेह किसी के प्रति मर जाए अकस्मात किसी कारण से, तो वह कृपा ही कारण है। कस्यानुभाव से न देव विद्म, हे देव क्रीड़ा परायण, हे क्रीड़ा परायण, आप बहुत प्रकार से नृत्य किए हमारे पति के सिर पर, बहुत क्रीड़ा कर रहे हैं वृंदावन में, अथवा हे ज्योतमान, हे चमकने वाले, बहुत सुंदर आप लग रहे हैं, बहुत क्रीड़ा करते हैं। तो हे देव, हे परम पूज्य, हे परमाराध्य, हम नहीं समझ रहे हैं कि यह सौभाग्य हमारे पति का किस कर्म का फल है। किसी कर्म का फल नहीं है, यह आपकी कृपा है कारण। कस्यानुभाव से न देव विद्म, क्या नाग पत्नियों ने कहीं पौर्णमासी जी के मुख से सुना या किसी के मुख से सुना है क्या? सुना क्यों नहीं होगा, वे देव कोटि की स्त्रियां हैं, तो ब्रज में रह करके कौन कहां तपस्या कर रहा है, कौन किधर रह रहा है, क्या उनको पता नहीं होगा? और वो अभी बेलवंत तट पर है काली दह के, जहां लक्ष्मी तप करती है, तो इसका पता हो गया होगा उन लोगों को। जदवांशया श्री ललना चरत तप आचरत तप, इन सब उद्गारों से हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि वास्तव में भगवान धर्म पालन से, भक्ति करने से प्रसन्न होते हैं, और तप करने से तथा सभी जीवों पर अनुग्रह करने से, अनुकंपा करने से, और स्वयं अभिमान अहंता ममता से शून्य रहने से तथा दूसरों को मान देने से, यह नहीं समझ लेना चाहिए कि जब तपस्या और धर्म के पालन से भगवान का यह अनुग्रह नहीं मिला है तब करना बेकार है। तो हम पर भी काली जैसी कभी न कभी वो कृपा कर देंगे, चुपचाप बैठे रहे, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान साधन की अपेक्षा करते हैं, कम से कम कालिये साधन तो यह किया था ना कि जाकर के जमुना जी में रह रहा था वृंदावन में, अपनी ओर से इतना तो किया था। अगर यह नहीं किया होता तो भगवान थोड़े रमणक दीप जाकर के अपना शरण देते उसको, तो इतना तो किया है। भले एक भक्त से झगड़ा करके ही रह रहा है वृंदावन में, लेकिन रह रहे हैं, इतना किया। तो बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक है नाग पत्नियों के, और उनकी दृष्टि में यही सबसे बड़ा सौभाग्य है कृष्ण का प्राप्त होना, किसी जीव को भगवान का चरण मिलना, चरण रज मिलना, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो आगे कहती हैं कि आपके चरण रज के जो प्रपन्न है, अर्थात आपका चरण रज जिनको मिला हुआ है, वे इतना सुखी रहते हैं, इतना सुखी रहते हैं कि उस सुख के आगे वे स्वर्ग की भी कामना नहीं करते। संपूर्ण भूमंडल का राज्य भी उन्हें तुच्छ लगता है, और ब्रह्मा जी के लोक का अधिपत्य तथा पाताल लोक का अधिपत्य भी उन्हें तुच्छ लगता है। इसके साथ ही साथ पांच प्रकार की मुक्ति भी उन्हें फीकी लगती है, तथा योग की आठों सिद्धियों की तो बात ही बेकार है। इस तरह से भगवान की भक्ति में जो सुख है, कृष्ण के साथ होने में, उनके चरण रज को प्राप्त करने में जो सुख है, वो कहीं विश्व में सुख नहीं है किसी भी अवस्था में। इस विश्व में ब्रह्मांड में सुख की बात तो दूर रही, इसके आगे अपुनर्भव मुक्ति में भी वो सुख नहीं, इसको ये कह रही है। न लाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछन्ति यत् पादरजः प्रपन्नः। यत् पादरजः प्रपन्नः, जिस चरण रज में या जिसके चरण रज में रहने वाले लोग, ब्रज में वास करने वाले भक्त, चरण रज प्रपन्ना का प्राप्त है। श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं प्राप्त है, जो पा गए हैं उस सुख को, भगवान की भक्ति जो कर रहे हैं और विशेष करके ब्रज में, वे स्वर्ग को तुच्छ समझते हैं। उनके किसी काम की चीज नहीं है स्वर्ग लोक में। पूरा स्वर्ग में इस पृथ्वी से लाखों गुना अधिक स्टैंडर्ड की वस्तुएं भरी पड़ी हैं, सब चीज, चाहे भोजन, चाहे बिछौना, सवारी, या कोई भी एटमोस्फियर जो कुछ भी है वहां, इस पृथ्वी से लाखों गुना बेटर, उत्कृष्ट है। परंतु जो भगवान श्री कृष्ण के चरण रज के प्रपन्न है, चरण रज प्राप्त कर चुके हैं, वे स्वर्ग की कामना नहीं करते, इतना सुखी होते हैं। नाक कहते हैं स्वर्ग को, कम का अर्थ होता है सुख है। और अ कम नहीं सुख, दुख, तो फिर न, जहां नहीं असुख है, जहां दुख नहीं है उसको नाक कहते। न माने नहीं, अ माने नहीं, और क माने सुख। तो एक अ लगाएंगे तो इसका अर्थ होगा नहीं सुख मतलब दुख, और फिर बाद में पहले न लगा दिए तो उसका अर्थ हुआ नहीं सुख का अभाव में। हाँ, नहीं सुख का अभाव मतलब केवल सुख ही सुख। नाक पृष्ठ, पृष्ठ से तात्पर्य है सर्वोपरि स्वर्ग, इंद्रदेव का पद आदि, नाक पृष्ठ, पृष्ठ ऊंचाई को कहते हैं। श्रेष्ठ स्वर्ग की ही कामना नहीं करते हैं। स्वर्ग में जैसा मैं पहले कहा, बहुत उत्कृष्ट स्त्रियां रहती हैं और रसनेन्द्रिय के विषय भोजन, वहां के फल, वहां का जूस, ये सब तो लिखे गए हैं भागवत में कैसे कैसे हैं, वहां का आसन, हाथी दांत के सब पलंग बने हुए, प्लास्टिक का और से काठ का पेड़ का नहीं है जिसमें घुन लग जाए, ऐसा। और ऐसे ऐसे भवन हैं जिनमें बैठने पर कोई व्यक्ति मर नहीं सकता, भूख नहीं लगती है, बुढ़ापा नहीं आती है, शोक नहीं होता है किसी चीज का। द्वारका में इंद्रदेव ऐसी सुधर्मा सभा भेजे थे, मतलब बना बनाया भक्त भवन ऑटोमेटिक भेजा गया था। आज तक तो ऐसा कहीं पृथ्वी पर नहीं है कि पूरा बना हुआ भवन ही भेजा जाए। कुछ मोबाइल घर होते हैं विदेशों में, लेकिन जमीन पर ही थोड़े रेंग करके चलते हैं, खींच करके ले जाते हैं ट्रक की तरह। लेकिन स्वर्ग के भवन इस पृथ्वी पर लाए गए थे भगवान के लीला काल में, और उसमें जादव बैठते थे, जहां सदूर्मियां नहीं सताती थी, जन्म नहीं, मरण और बुढ़ापा, भूख और प्यास, शोक तथा मोह, उन भवनों में बैठने पर मोह नहीं होता था, मैं ये हूं, मैं मेरा ये है, ये अज्ञान की वृत्ति नष्ट हो जाती। भवन ऐसे हैं जहां अज्ञान नहीं रहता है, केवल यही भावना रहती है मैं कृष्ण का। सुधर्मा सभा उसको इंद्र ने भेजा। तो जहां भवन ऐसे हैं और बगीचा जो संकल्प के अनुसार कोई भी वस्तु दे सकते हैं, वृक्ष जो कल्प वृक्ष कहते हैं, केवल फल ही नहीं देते हैं और फल भी देते हैं तो इच्छा करने वाले की इच्छा के अनुसार साइज में, जितना खा सके। और वो तो जूस बनता रहता है, फल गिरते हैं फर्श पर बड़े बड़े वृक्षों से और जूस की नदी बह जाती है। देवता लोग कभी भी फल नहीं खाते हैं, चाकू से काट करके केवल जूस पीते हैं। इस पृथ्वी पर तो अब पका हुआ फल भगवान को ही नहीं मिल रहा है, आदमी को क्या मिलेगा, ये भी कच्चा ही खाते हैं, कई दिन का बासी। ये क्या करे, जब प्राकृतिक जगत में आए हैं तो यहीं का भोजन मिलेगा। एकदम कच्चा चल रहा है, टमाटर कच्चा आते आते पीला हो जाता है, आम कच्चा तोड़ा जाता है, केला तो सब देखते ही है कहाँ कितना कच्चा आ रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा है इस पृथ्वी पर। लेकिन इसी ब्रह्मांड के भीतर स्वर्ग है, जहां पर सब कुछ स्वाभाविक है और बहुत सुमधुर, बहुत स्वादिष्ट, ऐसे ऐसे फल हैं, ऐसे ऐसे जूस हैं, जिनका रस पीने पर भागवत में लिखा गया है कि शरीर में कभी झुर्रियां नहीं पड़ती, कभी थकावट नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती। परंतु भगवान कृष्ण की भक्ति में जो संतुष्ट हैं, उन्हें ऐसा सुख मिलता है कि उनके लिए स्वर्ग का वह सुख भी बिल्कुल है जान पड़ता है, तुच्छ जान पड़ता है, कभी कामना नहीं करते। दिए मानम न ग्रहणते, भगवान कहते हैं, भगवान कपिल देव माता देवहूति से, कि हमारे भक्त ये सब देने पर भी नहीं लेते हैं, इच्छा क्या करेंगे, न वांछन्ति, यहां नागपत्नी कह रहे, इच्छा नहीं करते। कोई कहे कि भाई इसलिए इच्छा नहीं करते हैं कि जानते हैं कि दुर्लभ है, इच्छा करके क्या करेंगे। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, दिए मानम अति न ग्रहणती, और देने वाला कौन, मैं सबसे बड़ा अधिकारी, सारे विश्व का मालिक मैं हूं, महेश्वर सर्वलोक महेश्वर, मैं देता हूं लेकिन नहीं देता। दिए मानम न ग्रहणती बिना मत सेवनम जना, नहीं लेते। भागवत में ऐसे अनेक भक्तों की कथाएं हैं कि भगवान उन्हें दे रहे हैं और वे नहीं ले रहे हैं, कहते नहीं हम नहीं ले, हमको आपके चरणों की भक्ति चाहिए। जैसे वृत्रासुर जी स्पष्ट इनकार कर देते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक ऐसा ही श्लोक को ही बोलते हैं इसी तरह के, हे प्राणनाथ, हे सर्व सौभाग्य निधे, हमें आपको छोड़ करके स्वर्ग नहीं चाहिए, पृथ्वी का साम्राज्य नहीं चाहिए, पाताल का राज्य, ब्रह्मा जी का राज, योग की सिद्धियां और मुक्ति कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपने माँ की बाट जो होते हैं, और जैसे खूंटे में बंधा हुआ बछड़ा अपने माँ की प्रतीक्षा करता है, और जैसे प्रदेश में गए हुए अपने प्रियतम पति की प्रतीक्षा पत्नी करती है, उस तरह से मैं आपकी प्रतीक्षा से छुटकारा। भीषण युद्ध हो रहा है, सारी सेना भाग चुकी है वृत्रासुर की, और एक बाह कट चुकी है, अभी बाह नहीं कट। तो उस दशा में वृत्रासुर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। सिद्धा सिद्धर स्वामी टीका में लिखेंगे, भगवान मानो कहते हैं कि आपको स्वर्ग दे देता हूं, तुम सुखी हो जाओ, क्या मेरी दासता को लेकर करोगे, तो कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए। और जब अंत में ये भावना आती है कि मुझे भगवान की सेवा नहीं मिल पाएगी, भगवान का संग नहीं मिलेगा, फिर से भगवान शंकरसन देव के तो कहते हैं, हे देव, हे नाथ, यह कृपा कीजिए कि जन्म जन्म में आपके भक्तों का संग मुझे मिले और अन्य कहीं मेरी आसक्ति न हो। इस प्रकार के वाक्य श्लोक भागवत में 3 बार आए हैं, ठीक ऐसा ही दोहराया गया, थोड़ा थोड़ा हेर फेर कर। ननाक पृष्ठम न च पारमिष्ठ, गजेंद्र जी भी कहते हैं, एकांतिनो जस्यन कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्ते आनंद समुद्र मग्नः। भगवान की लीलाओं को गा करके एकांति भक्तजन आनंद के समुद्र में मग्न रहते हैं। इसीलिए एकांतिनो जस्यन कंचनार्थम, भगवान से कुछ भी नहीं चाहते हैं, सारा संसार फीका लगता है इस कीर्तन के आनंद से। भगवान के लीला गान के आनंद के आगे सारा सुख फीका लगता है। जो सुख हो तो गोपाल ही गाए, सूरदास ने लिखा, सबसे बड़ा सुख भगवान की लीला गाने में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो भगवान की भक्ति का जो सुख है वो श्री जी चाहती है। श्री ललना जब वांछया, वहां वांछा शब्द है और फिर यह वांछा शब्द है, न वांछंती। भगवत भक्ति से तृप्त रहने वाले भक्त कुछ भी नहीं चाहते हैं, तो स्वर्ग का यह सुख है। तो फिर कैमुत्त न्याय के अनुसार यह श्लोक रखा गया है, जब स्वर्ग की कामना नहीं करते हैं तो पृथ्वी के साम्राज्य की तो बात ही क्या है। ये इस तरह से रखा गया, ननाक पृष्ठं नच सार्वभौम। जब स्वर्ग नहीं चाहते हैं तो सार्वभौम क्या चाहेंगे। सार्वभौम का अर्थ होता है सर्व भूमि पर का आधिपत्य, समस्त भूमि का राजा। जितना पृथ्वी है उसका अकेले कोई राजा हो तो उसको सार्वभौम कहें, सर्व भूमि का अधिपत। तो जब स्वर्ग नहीं चाहते हैं तो सर्व भूमि का अधिपत्य क्या चाहेंगे। अच्छा, न पारमेष्ठ्यं नरसाधिपत्यं। और जब परमेष्ठी का पद, जब ब्रह्म लोक की संपत्ति नहीं चाहते हैं तो रसातल में क्या रखा हुआ है, यह भाव। और जब मुक्ति भी नहीं चाहते हैं तो आठ सिद्धियों के क्या गणना है। इस प्रकार से इसका अर्थ किया गया है, क्योंकि जुगल जुगल में पहला जो शब्द है उत्कृष्ट है, पहला जो पद है उत्कृष्ट है। इसका ऐसे अर्थ नहीं करेंगे कि वे स्वर्ग नहीं चाहते हैं, पृथ्वी का साम्राज्य नहीं चाहते हैं, ये ब्रह्मा जी का धाम नहीं चाहते हैं, रसातल की सिद्धि नहीं चाहते हैं, मुक्ति नहीं चाहते हैं और योग सिद्धि नहीं चाहते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। अर्थ है कि जब स्वर्ग नहीं चाहते हैं तो फिर इस पृथ्वी के अधिकार की तो बात ही क्या है। जैसे मैं अर्थ पहले किया उस तरह से, तो पांच प्रकार की मुक्ति है। मुक्ति में अपार सुख है। श्रीमद् भागवत में मुक्ति की बहुत प्रशंसा की गई है। इस प्राकृत जगत के जन्म मरण से, दुख से, यहाँ के नियमों से परे हो जाना, छूट जाना बहुत भारी सुख है। जब यहाँ के जेल से निकल निकल कर आदमी सुख का अनुभव करता है, जबकि यही रहता है। अभी माँ के गर्भ से निकला है तो भाई जेल में चला गया, तब तक हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, वह भी एक नरक है। भागवत में लिखा गया है कि कारागृह और अस्पताल दो नरक है। फिर आदमी वहां से आकर के कुछ दवाई हो जाती है, चिकित्सा हो जाती है तो अपने को सुखी मानने लगता है। लेकिन वह व्यक्ति जो इस जगत के सारे नियमों से, बंधनों से पार हो गया, तो कितना सुख होता होगा। उपनिषद में लिखा गया है किसी व्यक्ति को ब्रह्मा जी के समान आयु मिले, द्विपरार्ध आयु, और उतने वर्षों तक पूर्ण स्वस्थ रहकर और पूर्ण अधिकार पूर्वक इस प्राकृतिक जगत को भोगे, खाने लायक चीज खूब खाए, स्वर्ग का इधर उधर का या सूंघे देखे सब कुछ, तो उसको जिस सुख की प्राप्ति होगी ब्रह्मा जी के पूरा आयु तक, उससे कोटि 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 परार्ध कोटि सुख मिलता है ब्रह्म ज्योति के अनुभव में, जो इस प्राकृत जगत से परे है। करोड़ों गुना सुख मिलता है, पर श्री रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि उस मुक्ति सुख से कोटि 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 गुना सुख भगवान की भक्ति में मिलता है। तो इस जगत के सुख की तो कोई तुलना ही नहीं है भगवान के सुख के आए, भगवान के नाम गान आदि के सुख के आए। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। यह आनंद देता है ऐसा न कहकर के कहते हैं आनंद के समुद्र को प्रतिक्षण बढ़ाता जाता है। कितना ये समुद्र फैलेगा, कितना व्याप्त होगा, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। क्या श्रीकृष्ण संकीर्तनम, श्रीकृष्ण संकीर्तनम की विशेषता बता रहे हैं आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। प्रतिपदन का अर्थ है प्रत्येक क्षण जितना कीर्तन करते जाइए, जितना लीला गान सुनिए या गाइए, उतना ही आनंद वर्धन होता जाता है। तो प्रश्न होगा कि आखिर समुद्र जैसा आनंद है, इसकी कोई सीमा नहीं है, उतने ही पर रुका रहेगा? नहीं नहीं, ये आनंद समुद्र को और बढ़ाता जाता है। खास करके नाम संकीर्तन आनंद समुद्र को बढ़ा देता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। श्रीकृष्ण संकीर्तनम शब्द से भगवान का लीला गान आदि सब आ गया। एक भक्त ने लिखा है कि किस भक्ति के कौन आचार्य हैं, तो वे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कीर्तन के आचार्य, बैया सखी कीर्तन है। तो संकीर्तन का अर्थ है लीला संकीर्तन, नाम संकीर्तन, गुण संकीर्तन। इस तरह से तुम भगवान का यश गाने पर, नाम गाने पर जो सुख प्राप्त हो गया, उस सुख के आगे इस प्राकृत जगत के सुख की बात तो दूर रही, मुक्ति का सुख भी किसी काम की चीज नहीं। यहां तक केवल ब्रह्म ज्योति का सुख नहीं, वैकुंठ में भगवान का पार्षद बन करके जो उनकी सेवा होती है, उससे भी उत्कृष्ट सुख है भगवान के कीर्तन में, भजन में। यह भी कहा गया है, इसलिए वहां भी वैकुंठ में भी भक्तजन सदा भगवान की कीर्ति में लुब्ध रहते हैं। तृतीय स्कंध के 15वें अध्याय में बात लिखी गई है, सदा कृष्ण का जस गाते रहते हैं। और लिखा गया है कि जब सबसे सुंदर गायक भगवान के वनमाला का अधिकारी भ्रमर राज गाता है तो सारे पक्षी चुप हो जाते हैं, क्योंकि वहां गायकों में स्पर्धा नहीं है। जब भ्रमर राज गाने लगते हैं तो और पक्षी चुप हो जाते हैं, सुनने लगते हैं, ऐसा लिखा गया है, क्योंकि वे सबसे बड़े गायक भगवान के माला के अधिकारी माला पर बैठते हैं। और भी भ्रमर हैं, लेकिन एक भ्रमर राज बड़ा सुंदर वर्णन है कि उनके गाने पर और सब पक्षी चुप हो जाते हैं, सुनने लगते हैं। सर्वदा कीर्ति गाई जाती, लक्ष्मी जी झूले पर बैठकर भगवान का जस गाती रहती हैं सखियों के साथ, राधा रानी भी अधिकांश समय भगवान की लीलाओं के गाने में बिताते। ऐसा जस श्री कृष्ण ने इस जगत में फैलाया है कि यही तो आनंद का स्रोत देता है, यही सुख देता है वास्तव में, इसके बिना तो रह ही नहीं सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, आनंदामुधिवर्धनम प्रतिपदम। यही नागपत्नियां कह रहे हैं कि जो आपकी भक्ति से संतुष्ट हैं, आपके चरण रज के प्रपन्न हैं, वे स्वर्ग के भोगों की कामना ही नहीं करते, फिर इस पृथ्वी पर ये बम्बई दिल्ली कलकत्ता के भोगों में क्या फंसे, यहां क्या रखा है? तो बंबई में तो मैं देखता हूँ बैतरणी नदी मल मूत्र की चारों ओर बहती रहती है और दुर्गंध फैली रहती है, फिर भी लोग संतुष्ट हैं कि हम स्वर्ग में हैं, कुबेर जी की नगरी कहते हैं। कुबेर जी वहां थूकने में भी संकोच करेंगे। कुबेर जी अलकापुरी में रहते हैं। ननाक पृष्ठम नच सार्व भौमम और न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम, न ब्रह्मा जी के समान पद या उनका भोग चाहिए और न रसाधिपत्यम, रसातल में स्वर्ग से भी अधिक संपत्तियां हैं कहा जाता है, लेकिन भक्त उसकी भी कामना नहीं करते हैं। न योग सिद्धि पुनर्भवम, योग सिद्धि नहीं चाहते हैं, मोक्ष नहीं चाहते। उसका अर्थ पीछे से लेना पड़ेगा, जब अपुनर्भव नहीं चाहते हैं तो योग सिद्धि क्या चाहेंगे। संस्कृत व्याकरण के कई नियम है, थोड़ा थोड़ा समझने से बातें समझ में आ जाती है। जब अपुनर्भव मोक्ष नहीं चाहते हैं तो फिर योग सिद्धि क्या चाहेंगे, वो बेकार चीज है। जतपाद रजह प्रपन्ना, जिनके चरणों के रज के शरणागत भक्त इतना सुखी होते हैं। और फिर काली के स्वभाव को कहती हैं कि वही चरण रज, प्रदेश नाथाप दुरापमन्य तमो जनी क्रोध बसो यही सह, संसार चक्रे भ्रमता शरीर लो जदि क्षत सभव समक्ष। तब उसी चरण रज को ऐसा आप हे नाथ, यह पा गया, यह जो अभी अभी आपको फुफकार करके काटना चाहता है, ऐसा करते ये दिखा कर कह रहे यह पा गया, ये दुष्ट राज खलराज यह पा गया, ये आपकी कृपा है। तदेश नाथप दुराप मन्ये, अन्य दुरापम जो श्री ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है, वो भी कामना करते हैं कि इस ब्रज ब्रज में हम तीर्ण बन जाए, गुण बन जाए, पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। तो ब्रह्मा और ध्रुव जी उद्धव जी चाहते हैं ब्रज में तीर्ण लता आदि बनना, तो अन्य दुरापम अन्यों के द्वारा दुर्लभ चरण कमल मिला। ब्रह्मा जी को भी भगवान का चरण कमल नहीं मिला था, जब वे भगवान की स्तुति कर रहे थे चार सिर से, तो बच्चे सब हंस रहे थे कि क्या कर रहा है इतना बड़ा आदमी चार मुंह वाला, और श्री कृष्ण तो छोटे थे, ब्रह्मा जी बड़े थे, चरण अब कैसे छुए, चरण नहीं छू पाए, दूर से ही ब्रजरज में लोट लोट कर प्रणाम करके फिर भागे। उन्होंने सोचा कि भगवान की लीला में मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, एक और अपराध कर रहा हूँ, एक अपराध तो किया बछड़ा चुराया है, अब ये अपने सखाओं के साथ खेलेंगे खाएंगे छोड़ इनको। अभी पूरा खाए भी नहीं थे, हाथ में दही भात का कौर लिए थे भगवान, अंगुलियों में अचार खोसे थे नींबू अदरक आदि का, ऐसे थे और जैसे लगता था वे भकुआ गए हैं, बोले नहीं ब्रह्मा से, ब्रह्मा से ये नहीं कहे कि आप जाइए चाहे रहिए, एकदम प्रसन्न हो गए थे ये कौन है क्या बोल रहा है, ऐसा भगवान व्यक्त कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी भागे जल्दी प्रणाम करके, नहीं तो कह रहे थे कि नहीं अब मैं सृष्टि नहीं करूंगा, मैं वहां नहीं रहूंगा, हमको यहाँ तीर्ण बना दीजिए, गुल्म बना दीजिए, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। फिर भी भगवान ने ये नहीं कहा कि अच्छा ठीक है चाहे जाइए कुछ कीजिए, तो भगवान का चुप रहना ब्रह्मा जी को असह्य हो गया, वो भाग गए। कहते सौ वक्ता एक चुप हराई, सैकड़ों वक्ता को एक चुप रहने वाला हरा देता है। भगवान ऐसे मौन साधे थे, यहां भी मौन साधे, नाच रहे हैं सब लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, न काली से न काली की पत्नियों से। तो वो लोग कहते हैं मौन सील ने एक श्लोक में, हमें आप एकदम मौन व्रत ले लिए, स्तुति करते हुए वो कहते हैं कि मौन धारी को प्रणाम है, ऐसा वो कहते हैं। उसका अर्थ है सिद्धर स्वामी जी कुछ भिन्न कर रहे हैं, लेकिन चक्रवर्ती पास जी अर्थ किए हैं कि जब से हम आई हैं तब से आप मौन ही रहे, कुछ तो बोलिए मुंह खोलिए। तो भगवान ने ब्रह्मा जी के सामने कुछ बोले नहीं, तो ब्रह्मा जी भाग गए। तो ब्रह्मा जी के लिए भी जो दुर्लभ है भगवान का चरण कमल, तो स्पर्श नहीं मिला, वही चरण कमल भगवान स्वयं ही काली के मस्तक पर लाए। आज तो कहीं ऐसा हुआ होगा, कोई भक्त प्रणाम करता होगा तो भले कभी चरण रख देते होंगे बलि महाराज के मस्तक पर रखे। वहां भी प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ऐसा सौभाग्य न ब्रह्मा जी को मिला है, न लक्ष्मी जी को, न शंकरसन को, न किसी को, कि आप स्वयं ही अपना चरण अर्पित किए बलि के मस्तक पर और अपना समझ करके बांध रहे हैं, इसका वैभव छीन लिए, इसका रोग दूर करने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने, अनुमोदन कर रहे हैं, बहुत प्रसन्न है प्रहलाद महाराज। और कहते हैं कि पता नहीं क्यों हम असुरों के साथ आपकी इस प्रकार की स्नेह भरी दृष्टि होती है, जबकि हम लोग जाति से बहुत बुरे हैं, दूसरों को दुख देने वाले हैं, लेकिन आपकी इस प्रकार से अनुकूल दृष्टि हम लोगों के प्रति कैसे हुई? केवल आपकी कृपा, भगवान से कह रहे प्रहलाद महाराज। ठीक यही बात नागपत्नी आज कह रही है, वही वह चरण कमल, वह चरण रज, यह पा गया। ये सह शब्द काली नाग के दुष्टता को व्यक्त करने के लिए और अयोग्यता बता रहे हैं कि ये योग्य नहीं। इस और उस समय भी भगवान का चरण काली के फण पर ही टिका हुआ है, तो ऐसा ये पा गया। तो अन्य ही दुरापम, अन्यों के लिए दुराप, जैसे श्री के लिए दुराप, ब्रह्मा जी के लिए दुराप, दुह आप नहीं मिला है, दूर है मिलना। ऐसा की विशेषता बता रहे हैं तमोजली, एक तो जाति से ही तमोगुण में जन्म लिए, सांप जली का तो जाति, तमोजली घोर तमोगुण में जन्म लेने वाले नीच जाति का, एक तो जन्म से नीच और दूसरे स्वभाव से क्रोध बसा। तो चलो छोटी जाति में जन्म हो गया हीन में, लेकिन स्वभाव बदल दिया जाता है। जन्म भी तामसी जाति में हुआ और स्वभाव भी बना रह गया क्रोध बस। क्रोध करे समय समय पर तो ठीक ही है, लेकिन सदा क्रोध के ही बस में रहे, क्रोध हमेशा चढ़ा रहे, ऐसा रहा है क्रोध बस, क्रोधस्य बस, क्रोध के बस में रहे। मनुष्यों में 99% से भी अधिक ऐसे लोग हैं जिनके बस में क्रोध है, वे क्रोध के बस में नहीं। जैसे सब समय क्रोधी तो नहीं देखे जाते, कभी कभी क्रोध करते हैं, लेकिन उस समय भी वही क्रोध के बस में हो जाते हैं, ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन सब समय क्रोध प्रकट नहीं।